یا علی مدد. الوائز رائے ابولی مشنری وائز نمبر 811
21 of December Nayaz year 2005 My wife in Sultanabad Jamat Khana of Karachi چاہتا ہوں تین چار دن سے میری طبیعت اچھی نہیں ہے نارمل حالت میں واز نہیں کرتا لیکن اتنی دور سے آیا ہوں اور اتنی جماعت اکٹھی ہوئی ہے میں آپ کو نا امید نہیں کرنا چاہتا اکرام سے رحمان بابا ست پہرو جاگ سے سرو جنوں نے تیرا بھی تربھوگ سوامی لکھا مانگ سے مولانا حضرت امام سرور چھوٹی عمر سے ہم یہ سنتے چلے آئے کہ ایک امام مہدی آئیں گے جو دنیا کی خرابیاں گناہ دور کریں گے اور سکون اور سکھ پیدا کریں گے. پیرو نے بہت سی جگہوں کے اوپر میرا خیال ہے کہ 1000 سے زیادہ ایسے پاٹھ ہیں کہ پیرو نے اس بات کا ہمیں اشارہ کیا ہے. وہ زمانہ جب آئے گا دنیا کی بدیاں برائیاں سب مٹ جائیں گی اور انسان تھوڑے ہوں گے مگر اچھے ہوں گے. ہمارے پیر کہتے ہیں کہ اس وقت زندگی بالکل سادہ ہوگی. ایک جگہ پیر کہتے ہیں کہ درخت کے ساتھ اپنی روٹی کھانا پینا باندھ کے رکھو گے. یہ عموماً گھروں میں ہوتا ہے کہ چوہے بلیاں روٹی کو نہ کھائیں تو ہم چھت کے ساتھ اس کو باندھ دیتے ہیں, اس کو شکا کہتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ جھاڑے سے شکا باندھ دیں درخت کے ساتھ باندھے دیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مکان نہیں ہوں گے, درختوں کے نیچے سوئیں گے. پیروں نے جو کہا ہے میں آپ کو سب کچھ نہیں کہہ سکتا, एक तो वक्त पर जाएगा और दूसरा कई लोग डर जाएंगे। वह वक्त अभी नहीं है, काफी दूर है, लेकिन आज से 500 वर्ष पहले जितना दूर था आज इतना दूर नहीं है। इन्होंने जुदा जुदा तरीके से हमको ये बात सुनाई। दुल दुल घोड़े अली चढ़ से शाचड़ी चौद भवन मां वर्तियो, ऐसे बहुत सी बात है। अली दुल दुल पे चढ़ेगा और सारी दुनिया में उसका असर होगा, सारी दुनिया उसको कबूल करेगी। हमारे इमामों ने भी ऐसे इशारे किए हुए हैं। मैंने अभी थोड़े दिन पहले कहीं जिक्र किया है, 1935 पहली जनवरी, 1934 31 दिसंबर, ये रात 31 दिसंबर की थी 1934। दिल्ली में ऑल पार्टीज मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने इमाम को बुलाया था, बहुत इज्जत दी, और हिंदुस्तान के तमाम बड़े बड़े मुस्लिम लीडर्स थे, फिरोज कानून था, डॉक्टर इकबाल था, उसके अंदर सर जियाउद्दीन जो चांसलर था यूनिवर्सिटी का, सर सिकंदर आया था, ख्वाजा हसन निजामी, ऐसे ऐसे लोग थे, 40,000 मुसलमान थे। इमाम के लिए अपनी फिदाइयत को जाहिर करते थे। दूसरे दिन मौलाना सुल्तान अहमद शाह मंडप में आए, 8,000 इस्माइली पंजाब से दिल्ली आए थे दीदार के लिए। मंडप में लोग बैठ रहे हैं, औला के बैठ रहे हैं, सबसे निष्ठा की तहनीत में थे, कहते हैं या मौला कल हमें बहुत खुशी हुई कि मुसलमान जो हैं आप पर इतने फिदा हैं। सब बोले सबसली ये मेरे नाना की उम्मत है, अरे इनमें से अक्सर मुझे नहीं पहचानते लेकिन मेरे नाना की उम्मत मैं इन्हें छोड़ नहीं सकता, मैं इनका हाथ खोलूंगा। मौला फरमाया सबसली वो दिन दूर नहीं इस सारी दुनिया के मुसलमान मेरे पांव पड़ेंगे और मैं सारी दुनिया के मुसलमानों की रहनुमाई करूंगा। हर इमाम एक ही है, जामा बदलता है लेकिन नूर वही है। मौलाना शाह करीम हाजिर इमाम इस बारे में कामकाज कर रहे हैं, हो सकता है कि हज़रत इमाम के बाद के जो इमाम हैं वो भी ये काम पूरा न करे, लेकिन इसके बाद के इमाम इस काम के नजदीक होंगे। मैंने ये बात इसलिए कही, अब 3-4 जगह मैंने ये इशारे किए हैं ताकि ये चीज रिकॉर्डिंग में रह जाए कि जमातों को किसी ने ये चीज बताई है हो सकता है मैं दूसरी दफा जल्दी न आ सकूं या बिल्कुल न आ सकूं, मेरी उम्र का तो काल है, लेकिन जमातों को मैं कह रहा हूं अपने आप को इसके लिए तैयार करो। ऐ मोमिनों, इमाम को हमारी बहुत दुनियावी नजर से बहुत जरूरत है। मैं आपको दरमियान में एक बात और बताऊं, मार्च महीना 1954 मौला प्लैटिनम जुबली के लिए कैब आए, तालिका भेजा कि मेरी उम्र बड़ी हो गई और मेरी तबीयत अच्छी नहीं है तो मैं ईस्ट अफ्रीका नहीं आता और जो लीडर्स हैं उनको यहां बुलाता हूं, यहां से मौलिक प्लैटिनम जुबली करे। सनी रमी सोचल जो कैरो में है इसके हॉल में सारी अफ्रीका के लीडर्स इकट्ठे हुए, मता सलामत साथ थे, इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह तशरीफ लाए, व्हीलचेयर पर थे, मौला 8 बरस व्हीलचेयर पे रहे, घुटने दुखते थे, बहुत खुश थे, बड़े फरमान किए। इसके बाद जमातों की और इंफ्रादी मेहमानियां कबूल की, सब खत्म हुआ तो मौला ने तालिका लिखा, तालिका को क्या साइन किया एग्जीक्यूटिव काउंसिल फॉर अफ्रीका का प्रेसिडेंट था काउंट अब्दुल्ला हाशम गांधी जी। मैं नाम भी इसलिए दे रहा हूं कि हिस्ट्री रह जाए, उसको तालिका दिया, हुक्म किया कि अब्दुल्ला ये तालिका सर्कुलेट नहीं करना, तुम यहां से कैरो से सबसे पहले कंपाला जाओ और वहां से जो बड़े बड़े शहर है वहां जाके जमात में खड़े होके तुम ये चीज पढ़ना, सर्कुलेट नहीं करना। आमीन। कुछ दिनों के बाद काउंट का जो टाइटल है वो वजीर से मुंह पर है, अब्दुल हाशिम गांव जी कंपाला उतरे, युगांडा का बड़ा शहर है, बड़ी जमात है, वहां से किसी मो गए, किसी ने अफ्रीका देखा उसको याद होगा, किसुमो से नैरोबी आए, नैरोबी से मोमासा आए, ज़ंज़िबार गए और दार एस सलाम आए मेरे शहर में। उन्होंने ये तालिका पढ़ा, बहुत बड़े मैसेजेस थे। बाद में जब उठे तो लोगों ने घेर लिया, मैंने तालिका मांगा, उन्होंने दे दिया और मैंने इसकी कॉपी की, मेरे पास है, मैंने कभी सर्कुलेट नहीं किया। मेरे को हरफ ब हरफ याद नहीं, लेकिन मौला क्या कहते हैं, पहले इकोनॉमिक कंडीशन की बात की, मौला फरमाया कि आजकल ये 54 की बात है जब यूरोप के अंदर एक किस्म की मंदी थी, बिजनेस अच्छा नहीं था, आजकल इकोनॉमिक मंदी है, इसलिए मैं अपने रूहानी बच्चों को बोलता हूं खर्चा कम करो, पैसे बचाओ और फजूल खर्चे عیش و عشرت کے لیے مت خرچ. جب تم اپنے بزنس کے لیے کوئی نیا آرڈر دو, کس تو عدد کو مولا سمجھاتا ہے, نیا آرڈر دو تو تمہیں یہ یاد ہونا چاہیے کہ اس وقت کاٹن کی مارکیٹ بہت ڈاؤن ہے, کیونکہ سنتھیٹک فائبر جو ہے, یعنی کہ جیسے کہ کپڑا ہے, وہ کپڑا جس میں کاٹن یوز نہیں ہوتی نائلن کی طرح, بہت سستا ہے, اس لیے کاٹن خرید کے اس کی کمپٹیشن میں مت جانا. ایسی بہت سی باتیں نہیں ہو رہی. اب دیکھو کیا کہتا ہوں. اللہ کہتا ہے دنیا میں حکومت کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے, ایک آرمی اور ایک پیسہ. آرمی چاہیے ڈیفینس کے لیے, اور آرمی کو اور اسٹیٹ کو نبھانے کے لیے پیسہ چاہیے. تم پیسے کی فکر کرو, پیسے بچاؤ, مالدار بنو, لیکن اس پیسے کو فضول خرچ نہ کرو. پیسہ بچاؤ تاکہ دین اور جماعت کے کام آ سکے. تم اگر پیسہ بچاؤ گے تو دوسری جو چیزیں ہیں اس کی فکر میں کروں گا. دوسری چیز کون سی؟ آرمی. امام کے آج لاکھوں مرید ہیں جو ہمیں پہلے پتا نہیں تھا. اگر لڑائی لگی مانو, اور ہم کو کبھی مولا کہے کہ آؤ بھرتی ہو جاؤ, تو فوجوں میں سے تو مجھے نظر نہیں آتا کہ کوئی جائے. کھوجے کو تو پیسہ چاہیے, گولیاں نہیں چاہیے. لیکن ہمارے وہ بھائی بدخشانی, چترالی, خالو, تاجکستان والے اور ان کے اوپر جو ہے چھپے ہوئے ہیں, ان میں سے مولا آرمی کھڑی کرے گا. اور پھر صدر جی نے لکھا کہ خوراسانی دل الٹ سے, خوراسانی رام کے نارتھ میں ادھر سے بہت بڑی آرمی مولا کے ساتھ آئے گی. میں کوئی پینک پھیلانی نہیں چاہتا. عمر میری بڑی ہو گئی. میں یہ چاہتا ہوں جو جانتا ہوں چھوڑ جاؤں. اس لیے ریکارڈنگ ہو رہی ہے. ایک زمانہ آئے گا مگر کم از کم 100 برس کے بعد, ابھی نہیں, 100 برس کے بعد. 100 برس کے بعد 125 برس ہو گئے, 150 برس ہو گئے, یہ مولا بہتر جانتا ہے. لیکن میں آپ کو پہلے سے اس بات کی اشارت دیتا ہوں پیروں کے نام سے. اور امام سلطان محمد شاہ نے پرائیویٹلی پر ایسی بہت سی باتیں کی ہوئی ہیں. میں نے حال ہی میں پاکستان کی ٹرپ کی, تھوڑے سے دن رہے, معلومات بھی کی ہے. پاکستان کا فیوچر بہت اچھا, 4-5 سال نکل جائے گا, دن بہ دن پاکستان اونچا آئے گا. دل کو دہارس دے کے بیٹھو, آرام سے بیٹھو, اے مولا خیال کرو کہ ہماری تاجکستان کی اور اس علاقے کی جو جماعت ہے, انہوں نے 1100 برس نکالے, दो चार सौ वर्ष नहीं, 1100 वर्ष। वो कहीं बागम बाग नहीं किए उन्होंने, बर्दाश्त कर दिया, दुख उठा लिया, गैरों को देख के अपना घर छोड़ के उधर जाना और उनका कल्चर अख्तियार करके उनकी बदियों बुराइयों के अंदर हम अपने बच्चों को लगा देते हैं। इमाम ने अफ्रीका का प्लान बनाया था और यह प्लान मौलाना शाह हसन अली का था। हिंदुस्तान में से जमात को उठा के खासतौर से मौला ने अफ्रीका में उनको बसाया। डायमंड जुबली के टाइम पे अफ्रीका में 75,000 इस्माइली थे सारे अफ्रीका में, बहुत सुखी थे, मालदार थे, कोई भूखा नंगा नहीं था। इनको सुल्तान अहमद शाह गए 50-60 बरस गाइडेंस देते रहते थे, हर वीक में दो कभी कभी तीन ताली के आते थे, ये करो ये न करो, देखो ये माल निकला है मंडी के अंदर इसमें मत पड़ना, ऐसे ऐसे ताली के बोला अफ्रीका में भेजता रहा। अफ्रीका की जमात में पर्सनल इंटरेस्ट लिया। एक दफा बीच में बोलता हूं, मैं भूला नहीं कि मुझे क्या कहना है। एक दफा ये 1950-54 की बात है, अफ्रीका में मंदी आ गई। उस वक्त ये हाल ठीक है, हमारे लिटल एजुकेटेड एंड एजुकेटेड जो यंगस्टर थे छोटी छोटी नौकरियां ढूंढते थे। उस वक्त 200-300 शिलिंग की नौकरी मिलती थी। इमाम तालिका है माता सलामत के फंड में से मैं 5,00,000 शिलिंग रिलीज करता हूं और काउंसिलर को कहता हूं कि यंगस्टर्स को जो नौकरी छोड़ के बिजनेस करने के लिए तैयार हुए तो इसमें से उसको 5,000 शिलिंग एज ए गिफ्ट दिया जाए ताकि वो इनिशियल एक्सपेंसेस उठा सके और उनको बोलो कि अब कंट्री जाके बिजनेस करे। मैं पर्टिकुलरली कहता हूं कि तुम कॉन्गो जाओ, कॉन्गो रुवांडा बुरुंडी और कॉन्गो था उस वक्त बेल्जियम गवर्नमेंट थी। कई लोगों ने अर्जियां की 5,000 से, कईयों ने मोस्टली 5,000 से मिले रेडियो लिया, बैंजो लिया प्ले करने के लिए, ऐसी थोड़ी चीजें 500,000 शिलिंग की ले गए। ये लोग उधर गए, इधर उधर घूमते रहे, 6-8 महीने में 5,000 खर्च हो गए, मिला कुछ नहीं, वापस आ गए। मलक के पास रिपोर्ट पहुंची, मौला ने कहा हे बेवकूफो, मैंने तुम्हें कहा कि तुम कॉन्गो जाओ, तुम तो रुवांडा बुरुंडी है जो कॉन्गो नहीं है, अलबत्ता बेल्जियम की पोजेशन में है लेकिन कॉन्गो है और चीज है, कॉन्गो जाओ। और फिर सब कहते हैं कि गो अप टू अटलांटिक, यानी इधर वहां तक पहुंचो, किनशासा से भी आगे एटलांटिक किनारे पे जो गांव है वहां तक जाओ। वन डे आई विल टेल यू क्रॉस एटलांटिक। देखा आपने, इमाम की विजन देखी, ये 1954 की बात है। उस वक्त इसके दिमाग में कनेडा भूसा था, मौला के दिमाग में 54 में ये था, एक दिन मैं तुम्हें अटलांटिक क्रॉस करा के कनेडा ले जाऊंगा, क्योंकि अटलांटिक के उस तरफ कनेडा था, इस तरफ अफ्रीका था। 54 में हमें इमाम ने इशारा किया कि मैं तुम्हें कनाडा ले जाऊंगा, और कनाडा लेके आया। 70 में जमात अफ्रीका से गुजर चली गई, पहले अफ्रीका को आबाद किया, कच्छ से उठा के अफ्रीका ला गया, इनको तैयार किया, 75 वर्ष 80 वर्ष तैयार करके यहां से उठा के सब कनाडा ले गया, और उसे कोई मुश्किल नहीं पड़ी। वो दिनों दुनिया का बादशाह है, उसमें बड़ी ताकत है, कोई बात नहीं कि उसके पास दुनियावी तौर पे कोई ताकत नहीं है, आर्मी नहीं है, मगर उस ताकत इसके बहुत ज्यादा है, वो जो चाहे सो कर सकता है। मैं ऑस्ट्रेलिया गया 79 में, हजरत महमूद 7 दिन आए, 1 सितंबर से 7 सितंबर 79 बोला सिडनी में थे। पहले दिन जब बोला आए, देखो हमारे इमाम की किसी किसी खेल और रमत है, जमात में आए दुआ किसकी, मुखी को पूछा तुम्हारा इमिग्रेशन मिनिस्टर कौन है, देखो जवाब मुझे मालूम, ओके। अब हाजिर ना को तो पता लग जाता है। उसी रात को प्राइम मिनिस्टर मौला की होटल में आके कहता, योर हाइनेस परसों हमारी गवर्नमेंट की तरफ से आपको जो रिसेप्शन है मैं उसमें नहीं आ सकूंगा, क्योंकि मैं टोक्यो जाता हूं ऑफिशियल काम पे, लेकिन फॉरेन मिनिस्टर मेरी जगह आपको रिसीव करेगा, ओके। जिस दिन रिसेप्शन थी उसकी सुबह फॉरेन मिनिस्टर भाग के आया, कहते योर हाइनेस मैं बहुत माफी मांगता हूं, मुझे इंग्लैंड बहुत अर्जेंट काम के लिए जाना पड़ा है, तो मैं इमिग्रेशन मिनिस्टर जो है उसको सौंपता हूं, वो आपको रिसीव करेगा। इमिग्रेशन मिनिस्टर से मिलना था, देखो किस तरह इसने अरेंज किया। अब इमिग्रेशन मिनिस्टर ने साहब को रिसीव किया और बैठ के लोग खाते रहे, और ये दूसरे खूब बातें करते रहे। फिर दूसरे दिन साहब जमात में आए तो हमको कहा, मैंने तुम्हारे मिनिस्टर से क्या क्या बातें की। बोला पहली बात की कि मैंने इमिग्रेशन मिनिस्टर से बात की है कि मेरी जमात के लोगों को यहां लाया जाए और उनको कुछ फैसिलिटीज दी जाए, और उसने कबूल किया है, लेकिन कोई उसको डायरेक्टली अप्लाई न करे। अगर एप्लीकेशन करनी है तो पहले काउंसिल में करे, और काउंसिल फिर उधर ही एप्लीकेशन देगी, क्योंकि बहुत जगह के अंदर हमारे बहुत से लोगों ने मौला ने ये शब्द नहीं बोले, लेकिन मैं उसमें ऐड करता हूं कि बहुत से लोगों ने 420 का काम किया, बदमाशियां की। इतनी बातें मुझे याद है हमारे लोगों की बेदियानती, डिसऑनेस्टी के दुख होता है, हमारे लोगों का क्या लेकर, बहुत से लोगों का जमात माशाल्लाह बहुत अच्छी है, लेकिन बाज ऐसे यंगस्टर्स हैं कि जो उन सीधे काम करके अपना काम निकालना चाहते हैं और फिर हजर इमाम का नाम बदनाम होता है। मेरा फरमाया किसी को भी एप्लीकेशन करनी है काउंसिल की मारिफत करें और वहां अल्हम्दुलिल्लाह अभी बहुत से इस्माइली है और हमें दूसरों से ज्यादा आसानी है। जहां जहां भी हजर इमाम के मौजूद गए वहां की गवर्नमेंटों ने हमें बहुत रिस्पेक्ट दिया। कभी कभी ऐसा हो गया है कि हमारी हमारी जमात में से जब भी खराब काम करते हैं तो काउंसिलों में और फिर हजर इमाम तक पाते जाते। कैनेडा में इमाम ने मौजजा किया है, सचमुच मौजजा किया है। ईस्ट अफ्रीका में से मौला ने कैनेडा में जमात बसाई 37,000 इस्माइलीस ईस्ट अफ्रीका में थे। आज सारे ईस्ट अफ्रीका के अंदर 14,000-15,000 रह गए, बाकी सब गए। कैनेडियन गवर्नमेंट को हाजिर इमाम ने अपनी पर्सनल सिक्योरिटी दी है कि कोई इस्माइली गवर्नमेंट के ऊपर नहीं निभेगा, बोझ नहीं बनेगा। कोई भी इस्माइली कभी गवर्नमेंट के पास मदद के लिए आएगा तो हम बोझ उठा लेंगे, गवर्नमेंट के ऊपर कुछ नहीं पड़ेगा। ये हाजिर इमाम ने पर्सनल सिक्योरिटी का प्रोमिस दिया है कैनेडियन गवर्नमेंट को। आज तो उधर अलहमदुल्ला बहुत से अफगानी भी है। तो इस समय इमाम ने मिलना था इमिग्रेशन मिनिस्टर से, कोई जानता नहीं था, इंफ्लुएंस नहीं था, रूट नहीं थी, इस तरह अरेंज किया कि वो खुद मौला के पास। ऐसे से काम मौला ने किए और अंदर अंदर क्या करता है जमातों को पता नहीं लगता और यही बेहतर है जमातों को पता ना लगे। हमारी आदत है कोई भी नई चीज सुने हमारे पेट में गड़बड़ होती है, जब तक के 25-50 टेलीफोन करके लोगों को खबर न दे, सुना तुमने, सुना तुमने, ये सुना। हमारे अंदर ऐसे रेडियो बहुत है। इमाम नहीं चाह, लेकिन आज मैं आपको ये टॉपिक ज्ञान पूछे इसलिए कह रहा हूं कि फ्यूचर में आज से 10-15-20-50 वर्ष के बाद शायद हो सकता है कि ये टेप किसी के हाथ में आए तो उसको याद आए कि हाँ 50 वर्ष पहले अबोली मिशनरी ने यह बात कही थी और इमाम जमान के खयालात बताए थे। दीनदारों, मैंने आपको अभी कहा इस्माइली राज यानी कि इस्लाम का राज अल्लाह ने कुरान में कहा है, ऐ मोहम्मद तू गम न कर, एक दिन आएगा कि इस्लाम सारी दुनिया के दीनों के ऊपर रहेगा और सारी दुनिया के अंदर लाया जाएगा। इस्लाम जाहिर होगा, उस जमाने का इमाम सारी दुनिया के मोहम्मद की उम्मत को लीड करेगा। हो सकता है हमारी रीत रस्म में हमारे मजहब के अमल करने में कुछ चेंजेस मौला करें आगे। मौला हमें कहे दुआ ना करो, ढोल बजाया करो, वल्लभ बिल्ला हम ढोल बजाएंगे। हम तो मौला के हुक्म मानते हैं, हमारे अंदर वो शरीयत चीज नहीं है। हमारा सारा मजहब हजरत इमाम के फरमान पर टिका है, मौला जो कहे वो आमीन। यही हमारे मजहब की राज की बात है कि کہ ہم اپنے امام کے حکم پہ چلتے ہیں. مولانا امام سلطان محمد شاہ داتا تو اس وقت میں کہہ رہا ہوں جماعتوں کے اندر کہہ رہے تھے کہ مرشد کا حکم مانو. اگر رات ہو رہے اور مرشد کہے کہ دن ہے تو عذر مت کرو کہ دن کدھر ہے, تب بات ہے. اور اگر رات کو کہے کہ یہ دن ہے تو مانو کہ یہ دن ہے, حالانکہ دن نہیں ہے. مگر سوچو یہ کہ مولا نے دن کے وقت 12 بجے سورج نکلا کیوں کہا کہ ابھی رات ہے, اس کا کوئی بھید ہے؟ تو سلطان شاہ فرمایا وہ بھید امام سے پوچھو. تم اپنی عقل دوڑا کے امام کے فرمان کو کینسل مت کرو. پھر مولا حافظ شیرازی کا شعر بولتے ہیں, شعر یہ ہے کہ اگر تیرا مرشد تجھے یہ کہے کہ نماز پڑھنے کا مصلح ہے شراب میں بھگو کے اس پہ بیٹھ کے تو نماز پڑھ, تو عذر نہ کرنا, تیرا شیخ جو جانتا ہے تو نہیں جانتا. تو مت کہنا کہ شراب حرام ہے. تو امام اس قسم کی باتوں سے ہمیں سمجھاتے ہیں, اس میں جو بھید ہوتے ہیں عام لوگ نہیں سمجھ سکتے. بمائی سجاد رنگی کن, میں کے اندر شراب کے اندر اپنے مسلح کو بھگو دے. بمائے سجاد رنگی کن, تیرا جو مرشد ہے تیرے کو کہتا ہے کہ میں نے شراب میں سجادے پر رنگین کر دیا. اگر کہ سالک بے خبر نبوت ذرا ہو رسم منزل جو خالق تیرا سالک ہے مرشد ہے وہ عبادت اور مذہب کے رستے سے خبر ہے. مولانا رومی شمس کے عاشق تھے. ایسی چیزیں ہم اسماعیلیوں کو جاننی چاہیے تاکہ امام کی فرمان برداری ہو سکے. ایک دن مولانا شمس بیٹھے ہیں, بات چیت ہو رہی ہے اور کافی برسوں سے رومی شاگردی میں تھا اور اس نور کو جانتا تھا. مولانا شمس کہتے ہیں رومی مجھے تھوڑی شراب لا دے. اٹھا منانا کیا, دل میں شرمیلا آیا, اتنا بڑا شیخ اس نے زندگی میں شراب کو کبھی ہاتھ بھی نہیں لگایا, بو بھی نہیں سونی, اس کو آج مولانا شمس کے تجھے شراب لا دیا. ایک بوتل لی, ایک لکڑی لی, لکڑی کے سرے پہ رسی باندھی اور باقی رسی کے دوسرے کنارے پہ اور بوتل کا نیک باندھا. جب ادھر گیا تو برقع پہن کر گیا, مگر وہ جو شراب خانے کا مالک تھا بڑا چالاک تھا, وہ فوراً پہچان گیا کہ رومی ہے. دوڑ کے آیا, شراب بوتل بھر کے لایا, پیسے بھی نہیں دیے اور ये बोतल ऐसा रख दे रूम में चले आए, यानी जो शराब की बोतल लटक रही है वो बदन को न लगे। चलते चलते सदर की तरह का बड़ा चौक, हजारों आदमी आ रहे हैं जा रहे हैं, ये बोतल के गांठे खुल गई, बोतल गिर पड़ी और शराब के भपके छतों पर लोग इकट्ठे हो गए। भागने की जगह न मिली, रूमी पसीना पसीना हो गया, आंखों से आंसू निकल आए। लोग कहने लगे, अरे देख तो सही, जलालुद्दीन रूमी शराब में, उसकी क्या हालत हुई होगी। वो चाहता था कि जमीन मुझको निकल जाए। उस वक्त हजरत शम्स तब्रेज दौड़ते चले आए, लोगों को हटाया। क्या है कि हजरत मौलाना रूमी शराब पीता है, थोड़ी सी शराब के पेटे में थोड़ी शराब रह गई थी, नीचे झुके उठा के सूंघा, वापस सूंघा। लोगों को पूछा, क्या बोलते हो, शराब है, सूंघा तो सही। सबने सूंघा, क्या था, गुलाब का अर्क था। मैनिस शराब नहीं है, अर्क गुलाब। सबने सूंघा, माफिया मांग के शर्मिंदा होकर चले गए, अपने शागिर्द को बचा दिया और गिर जाए। मुर्शिद ऐसे खेल बहुत करते हैं। जरा सी हमारी जमात के अंदर ऐसे कच्चे लोग हैं, कभी मुखी के साथ या कामारी साहब के साथ कुछ अनबना हो गया, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, जमात को ना छोड़ क्या। मुखी ने मुझे देखा तक नहीं, ट्राइंग बॉय, अरे भैया तुम जमात खाने जाते हो, मौला के जमात खाना कभी मत छोड़ो, कितनी भी बेइज्जती हो जाए दुआ मत कराओ, दूसरे के पास जाओ, कमरे के पास जाओ, लेकिन जमात खाना कभी नहीं छोड़ो। इमाम की इस किस्म के शहर देखकर कच्चे लोग होते हैं, भाग जाते हैं। और पीरों ने हमको कहा है, पीरों ने हमें कहा है कि जो अधूरे होंगे, कच्चे होंगे, वो मजहब छोड़ के भाग जाएंगे। और आज मैं देख रहा हूं कराची के अंदर तकरीबन हर जमा खाने के अंदर मुझे कोई ना कोई औरत मिली है या भाई मिले हैं। नदी बाबा मेरा छोकरा सुनी हो गया है, मिशनरी बाबा मेरा हस्बैंड जमात खान में नहीं आता, सुनी हो गया है, इसी बात में मैं बहुत सुन रहा हूं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अभी तक मजहब पर जगह ली, और यह पर्सनल ग्रीवेंस के ऊपर, इसलिए मैंने कहा काउंसिल के साथ कुछ झगड़ा हुआ जमात करना छोड़ दो, उनकी कमरिया से झगड़ा हुआ जमात करना छोड़ दो, क्या है ये तुम्हारा ईमान है। ईमान तो यह है कि गर्दन उतर जाए, मगर ईमान ना। मैं मेरा गला खबर है आपको कहता हूं, वो पाठ बोलो, सिर सो हमारा
कौन।
swamana tere paon ka. Humne jab baiyat ki Hazrat Imam ki to humne apna sir uske paon mein rakh diya. Ye baiyat hai ke tan man dhan guru ko arpan kijiye. Ya Maula, mera maal, meri jaan, میرا جو کچھ بھی ہے سب کچھ تیرے قدموں میں نشاور ہے قربان ہے. یہ ہمارا مذہب ہے تیرے پر سادے جیونا نہیں بنا. تیری مہربانی سے تیری خاطر مجھے نجات ملے گی. بڑے منسلے ہو صاف دل سے مولا کو یاد کرو, اس کی فرمان برداری کرو. بولو من پیور من, بولے کا مطلب ہے وہ نہیں پیور من ہے. جیوڑا تو جان, اور کہتے ہیں خدا کے واسطے جان, اللہ کا تو جان, اللہ کا تو جان, خدا کے واسطے جان. اسماعیلی مذہب کا جو راز ہے دیندار ہو وہ یہ ہے کہ ہر حالت میں امام کچھ بھی کرے, کچھ بھی کرے, لیکن ہر حالت میں ہمارا ایمان, ہماری محبت اس سے دور نہ ہو. ہماری جماعت کے اندر, ہماری ہسٹری کے اندر اس قسم کے سینکڑوں واقعات ہیں کہ جو ہمارے لیے مشرہ ثابت ہوتے ہیں. ان کی روشنی میں ہم اپنے ایمان کی قدر ہوتی ہے. دولت کیا ہے؟ آج کی دنیا دولت کے پیچھے خوب گھوم رہی ہے. خدا تعالی نے کہا ہے شرک کا گناہ کبھی معاف نہیں کروں گا. آج دنیا بھر کا مسلمان شرک کر رہا ہے. دولت مسلمان کو دولت دو جو چاہے گناہ کرانا. تو دولت جو ہے وہ انسان کے قلب کو اندھا کر دیتی ہے. شمس تبریز اس کو لے آئے ضروری ہے. ابھی بھی تیرے دل کے اندر یہ بات رہ گئی کہ تو مولوی ہے اور شرح کو ہاتھ نہ لگا ہے, بہت نادم ہو رہا. لیکن اگر شمس اس کو چھوڑ چلے گئے, مرشد کبھی نہ کبھی ایگزامینیشن دیتا ہے. مگر ہمارے مولانا سلطان مرشد فرماتے تھے روز دعا مانگو کہ یا مولا میرا امتحان نہ لینا. مولا کہتے ہیں تمہارے اوپر ایک پرکھ پڑی ہے, اس پرکھ میں تم کبھی پورے نہیں ہوئے, اس لیے دوسری پرکھ نہ مانگنا. وہ پرکھ ہماری جماعت میں میری بھول بھی ہو گئی, لیکن میں ساری زندگی جماعتوں میں نکالی ہے. ہزاروں آدمی پرسنل مجھے جانتے ہیں, میں ان کو جانتا ہوں. آپ کی باتیں سنی ہیں, میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں. ہماری جماعت کے اندر سچے درشن جی 10% نہیں ہے. کل پرسوں میں نے کہیں بات سنائی ہے یہ دشمن یہی نہیں کہ آپ نے 8 روپے کمائے اور 1 روپیہ دشمن کا دے دیا. آپ کی زندگی کے اندر 24 گھنٹے ہیں, 24 گھنٹوں میں سے دشمن دو, کیونکہ 24 گھنٹے ایمان نے آپ کو جو زندگی دی ہے اس میں سے اس کو 10 من دو 3 گھنٹے. 24 گھنٹے میں रात दिन में से 24 में से 3 घंटे इबादत करो, दुआ पढ़ो, जमा खाने आओ, जमा की खिदमत करो, इल्म हासिल करो, अच्छी किताबें पढ़ो, दूसरों को सिखाओ, कोई मदद के लिए मांगता है तो जाओ उसकी मदद करो। कोई लाजिम नहीं कि पैसे ही से मदद होती है, पर्सनल मदद भी हो सकती है। बूढ़ी औरत है, बूढ़ा भाई है, बाहर नहीं जा सकता, उसकी दवा ला दो, कुछ और चीज चाहिए वो ला दो। ऐसी 3 घंटे जमात की खिदमत करो तो आप 10 मंदिर चाहोगे। ऐ मोमिनो, इस्माइली मजहब जो है वो नबियों का मजहब है, नबियों का, पैगंबरों का मजहब ये मजहब है। इस मजहब के ऊपर चलने वाले जो है वो जमीन और आसमान की दौलत रखते हैं। इस मजहब में से जो चीजें मिलती हैं उनके मुंह बंद हो जाते हैं, बोलते नहीं, लेकिन उनके एक्शन में से, उनके आमाल में से ये चीज जाहिर होती है। वो इतने नेक होते हैं, खुद नहीं खाते, दूसरों को खिलाते हैं। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात में हर जगह कुछ ऐसे लोग हैं। हमारे दार सलाम में एक काउंटेस मां थी, काउंटेस मादर शख्स, जब गुजर गई तो गैर कौम के लोग तकरीबन 200-250 लोग इतना पीटते थे, इतना रोते थे। मेरे लोगों ने पूछा, भाई वो तो इस्माइली थी, तुम लोगों को क्या है? वो कहने लगे, भले वो इस्माइली थी लेकिन हर रोज हमारे घरों में खाना दे जाती थी, कपड़े दे जाती थी, हमारे बच्चे पलते थे और बाहर किसी को कहती नहीं थी। ऐसे ऐसे लोग हमारी जमात में आ चुके हैं। ऐ मोमिनो, अपनी कमाई हुई दौलत में से इमाम को हक अदा करो, बहुत जरूरी है, लेकिन इस दौलत में किसी और का भी हिस्सा है, आपका अकेले का नहीं, बीवी बच्चों का है, रिश्तेदारों का है। नबी कहते हैं कि अगर तुम्हारी फैमिली में से कोई गरीब नहीं है तो फैमिली के बाहर के लोगों को, मिसाल पड़ोसी की मदद करो। मैंने 3-4 दफा कहा है और इंडिया में भी बोल के आया हूं कि हमको अल्लाह ने कहा कि अपनी आमदनी में से 5वां हिस्सा जुड़ा करो, उसमें 12.5% दुश्मन के लिए निकालो, 10% खुश रहे जो अल्लाह का हक है हम इमाम को देते हैं, 2.5% ज़कात है जो नबी को देते थे और वो दीन चलाने के लिए देते थे। इस तरह ये 12.5% दुश्मन बन दिए, लेकिन बाकी के जो 7.5% है उसके ऊपर आपको कहा है कि आप इसकी डिस्ट्रीब्यूशन करो। नजदीक का कोई रिश्तेदार है या दूर का रिश्तेदार है, पड़ोसी है, कोई नहीं तो आम लोगों के अंदर भी, गरीबों को, हाजतमंदों को इसमें से दो। अल्लाह बहुत राजी होता है, खुदा बहुत खुश होता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये चीज थोड़े ही दिन पहले मैंने कहीं कहा है, लेकिन बात ऐसी अच्छी चीजें हैं कि रिपीट करने का दिल होता है। सुबह का वक्त था, हुजूर दुआ पढ़ के नमाज पढ़ गए, लोगों से मिल के बाहर आए। एक आदमी दौड़ कर आया, सलाम किया, या नबी मुझे आपसे पर्सनल का हाल है, मैं दरवाजा खोल रहा हूं अपने घर का ताकि बच्चे बाहर निकल सके, मैं अभी वापस आता हूं। हुजूर ने मस्जिद के सामने बाहर रस्ते पे खड़े हो गए, ये घर गया, दरवाजा खोला, छोटे छोटे बच्चों ने टांगे पकड़ लिया, बाकी बातें चीतें हो लगी, भूल गया कि रसूलुल्लाह को प्रवेश किया है, खाया पिया और फिर खेतों पे चला गया। रसूल पाक खड़े रहे। 10-11 का वक्त हो गया, एक आदमी दूर से देखा, उसने आया कहते हुजूर आप अभी तक यहां खड़े हैं? कहा वो फलाना मुझे खड़ा कर दिया, और मैंने कहा हाँ अच्छा, मगर सरकार को तो अपने खेतों पे दिया है, लेकिन मैंने प्रॉमिस किया मैं खड़ा हूं, बागा घोड़ा ले गया उसके खेत पे जाके उसको कहा तूने शुरू किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े इस बार, अब तो अपना माथा पीटने लगा, भागा भागा आया, वहां पड़ा। रसूल पाक ने सिर्फ इतना कहा, और कोई होता तो कितना गुस्सा करता, नबी ने सिर्फ इतना कहा कि प्रॉमिस करो तो पूरा करो, ये ईमान की निशानी है, ये ईमान की निशानी है। किसी से उधार लिया है उसको बोला मैं पहली तारीख को दे दूंगा, तो 3-4 पहली तारीख निकल गई, देने का नाम ही नहीं, ये बेईमानी है, इसलिए बरकत नहीं होती। हमारे आमाल अच्छे न होने की वजह से दिनदारों खुदा हमारी रोजी कम कर देता है, वह रिज़्क का मालिक है, हर एक को रोजी देता है, लेकिन हम ऐसे काम करते हैं कि हमारी रोजी खुलती नहीं। नेक बनो, अच्छे बनो, खैरात करो, वादा पूरा करो, भूखे रह के भी कर्जा उतारो, कर्जा न रखो, और कर्ज ऐसी चीज है कि अगर कोई आदमी मर जाता था और लड़का के रिश्तेदार जाने या नबी मेरा बाप गुजर गया है आप फातिहा पढ़ो, पहला क्वेश्चन क्या था, कर्जा छोड़ गया? हाँ या नबी थोड़ा छोड़ गया, मैं उसका बेटा हूं, मैं वादा करता हूं उसका कर्जा भर दूंगा, तो नबी हाथ उठा के उसके लिए फातिहा बोले। लेकिन अगर वो कभी कह दे कि कर्जा बहुत है या नबी मैं नहीं भर सकता, तो नबी फातिहा नहीं पढ़ते थे। कर्जदार को बहुत बुरा समझा गया है, कर्जदार को चोर की तरह समझा गया है कि जो दूसरों के पैसे पे निभता है। चोर की सजा खुदा ताला ने बहुत पूरी रखी है, तीसरी दफा अगर चोरी करे अल्लाह कहते हैं उसका हाथ काट डालो, क्योंकि वो लोगों की जिंदगी को खलल में डालता है, चोरी करने से उनको जो नुकसान होता है। सॉरी माफ करना, चोर इस्लाम के अंदर जलील किस्म का आदमी है, और वो आदमी के जिसने इमाम से वादा किया और दुश्मन नहीं देता वो तो बड़ा चोर है, और सुल्तान अहमद शाह ने उसको चोर कहा है। ए मोमिनो, सुख चाहते हो दूर नहीं है, जरा हाथ लंबा करना चाहिए, अपना स्वभाव बदलो, अपने आमाल बदलो, अपनी जबान बदलो, अपना वादा बदलो, नेकामाली करो, आधी रोटी खाओ लेकिन सुख की पाक रोटी खाओ। आधी रोटी में जो सुख और मजा आएगा वो चोरी की हुई बिरयानी में मजा नहीं आएगा। इंसान दुखी हो जाता है और इसीलिए पाकिस्तान आज 50 वर्ष हुए हैं ऊपर आया ही नहीं। पाकिस्तान में नमाजें पढ़ी जाती हैं, मस्जिदों के मीनारे से अजानें होती हैं, हर जगह लिखा हुआ है अस्सलामु अलैका या अय्युहन्नबी। हालत यह है कि जेलें भरी हुई हैं, लोग किडनैप होते हैं और गन पॉइंट पे पैसे मांगे जाते हैं, डाके पड़ते हैं, चीजें लेने जाओ तो सच्ची चीज मिलती नहीं। ऐसी कंडीशन में कौम जो है हजार बरस भी ऊपर नहीं आई। अल्लाह कहता है कि कोई कौम जब तक के खुद के हालात नहीं बदले खुदा उसकी तकदीर को नहीं बदलता। हम दूसरों की फायदों की फिक्र नहीं करते, हम अपनी फिक्र करते हैं। हज़रत इमाम की जो मुरीद है, परसों हम एक जगह लंच खा रहे थे और उस लंच के अंदर एक नॉन स्माइली आदमी कहता है, दूसरे को कहता है कि मैंने एक चीज ताज्जुब वाली देखी कि सारी दुनिया में एक भी स्माइली भीख नहीं मांगता। एक गैर स्माइली ये बात जानता है कि कोई स्माइली भीख नहीं मांगता। आज हमारी इतनी इज्जत है, ये हजर इमाम की तोहफ़ा है। तो मैं उस तरीके की बात करूं जो बहुत जरूरी है। मौला कहता है हुकूमत के लिए दो चीजों की जरूरत है, एक आर्मी दूसरा पैसा। तुम पैसे की फिक्र करो, पैसा बनाओ जमा करो और जिस तरह तुम्हारा इमाम कहे उस तरह खर्च करो, बाकी दूसरी चीज का बंदोबस्त मैं करूंगा। 54 का ये तरीका आज मैंने संभाल कर इमाम का विषय बहुत दूर का है। वो क्या करना चाहता है, मेरा भी मुंह बंद है कि मैं आपको खोल के नहीं कह सकता कि हजरत इमाम क्या चाहता है और क्या करता है, लेकिन थोड़े थोड़े इशारे जो हो रहे हैं इस पे आप देखो कि आहिस्ता आहिस्ता हजरत इमाम दूसरे इस्माइली की नहीं है जो उनमें जा रहा है। मेरी दुआ है कि मौला हम सब के ऊपर अपनी मीठी नजर रखे, लेकिन गोल्डन जुबली के बाद मौलाना हजर इमाम का दीदा बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये जरूरी भी है इमाम के लिए, क्योंकि उसको जो काम करने हैं उसके अंदर एक घंटा जितनी फुर्सत की नहीं मिल सकती। मगर जो सच्चा मोमन है उसके दिल में कोई खदशा नहीं है, वो तो आंख बंद करके मौला को देखता है। ऐसा ही करो, आंख बंद करके मौला का दीदार करो। वो आपके दिल में है, दूर नहीं, दिल में है। इस हजरत इमाम के काम दिन ब दिन ऐसे बढ़ते जाएंगे कि इस्माइली तो ठीक लेकिन गैर इस्माइली भी उससे बड़े मुतासर होंगे। हजरत इमाम बड़े बड़े काम करेगा। हमारा फर्ज यह है जमात खाने रोज़ा दुआ कराओ ना कराओ आपकी मर्जी है, Siamo a fare oggi a qualche cerca. L'uomo si è dato le patte che non è che è il Apita mai una sera su mondo, toglierat vicaro, l'uomo che lì è due mango. Che signore lì è due mango? Quei non ismali dosta è, taklif me è, usche lì è due mango. Akhir wo ki musalman hai ya ek insaan hai sabke liye dua mango aur ban sake thodi thodi khidmat karo chahe wo kaise bhi ho jaye traffic bahut sakht hai us taraf koi ek boodha aadmi ya ek boodhi aurat khadi hai usko is taraf aana hai isse hisab se aa nahi sakti aapko aisa laga उसकी लकड़ी पकड़ के उसको रोड क्रॉस करा दिया उस पर वह दिगार को बहुत अच्छा लगा यदि इसने अगर कुत्ता पड़ा है उसको पानी पिला दो या उसके लिए कुछ मेहनत करो खुदा को यह भी बहुत पसंद है एक कुत्ते को पानी पिलाने के रिवर्स में اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اس فحش عورت کو کہو کہ میں زندگی بھر کے تیرے گناہ بخش دیے کتے کو پانی پلانے کے لیے زندگی بھر کے گناہ بخش دیے وہ بھی گناہ تھے جو ابھی تک نہیں کیے اس نے اللہ ایسا کریم ہے خدا کا راضی کرو اور بات کہوں گھروں میں محبت رکھو میاں بیوی کے جھگڑے نہیں ہونے چاہیے مجھے معلوم ہے مرد زیادہ غصے والا ہے مرد میں عورت سے زیادہ برائیاں ہیں ویکنیس ہے عورت معاف نہیں ہے لیکن عورت سے مرد زیادہ گنہگار ہے اس بات میں تحمل رکھو صبر رکھو آسانی سے کام کرو گھر کے اندر جو جھگڑے ہوتے ہیں اولاد کو خراب کرتے ہیں اور یہ اولاد بڑے ہو کے جماعت کے ممبر بنتے ہیں تو ان کی اولاد کے اندر بھی یہ خرابیاں جاتی ہیں اگر آپ نے اپنی اولاد کو اچھی طرح ٹریننگ نہیں دی خدا کی قسم آپ سے کچھ نہ لیا جائے اور اس کی سزا بھی ملے گی آپ اس میں محبت سے رہو ایک دوسرے کے لیے دکھ اٹھانا عبادت والوں کا کام ہے کسی نے گالی دی چپ کر کے خاموش ہو جانا عبادت میں شامل ہے تو میں میں کروا لے سوگار ویر کروھ نہ کریے بھائی سو کیا میں سو گالیاں دیے غصے میں کر چھوڑ دوں اور بے وقوف ہے اب گن کرے سو گن آپ کے ساتھ کسی نے بد سلوکی کی ہے اور شخص کہتا ہے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو خدا خوش ہوتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنی تمہارے لیے رسول اللہ کی لائف میں سیکھنے کے لیے بہت سبق ہے نبی صاحب کی زندگی ساری ایک سیکھ میں نے آپ کا بہت خیال لیا ہے میری باتوں کو یاد رکھو اچھے مومن بنو بدیاں برائیاں دور کر دو لوگوں کی خدمت کرو گھر میں اچھے رہو اور خدا نے جو کچھ دیا ہے اس پہ کنایت کرو لالچ مت کرو دوسرے کا گھر دیکھ کے اپنا گھر مت پھونکو
خدا هر نکمت پوری کرد، ایمان کی سلامتی دے، حقیقت کی سمجھ دے، اجیو برائیوں سے بچائے، آفت بلائے دور کرے، دشمن سکریت میں پڑھائے، عبادت کا شوق دے، اپنا فرمان بردار مومن بنا، اپنی محبت میں سرشار رکھے، مولا آپ کے دلوں کو آپ کے دلوں کے ساتھ آپ کے دماغ کو اس کے ساتھ آپ کے گھر میں آپ کی فیملی کو ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھے، اپنی میٹھی نظر میں رکھے، بخش نوازش دے، مولا شفقت میں رکھے، رحمت میں رکھے، مولا حضر ایمان ہر بیماری دور کرے، آپ کی آل اولاد کو بہتر بنائے، مولا آپ کو اچھی تندرستی دے، مولا آپ کی ڈیپو میں پوری کرے، حقیقت کی سمجھ تینوں دنیا میں آباد ہو سکے.